ईश्वर की मधुरता के बिना जीवन में जो कुछ भी मिलता है फिर भी अंदर से सुख की शांति की भूख भूख में आदमी शराब पीता है, पान मसाले खाता है, दुराचार करता है, न जाने क्या क्या करता है केवल रस के लिए। रस तीन प्रकार से आता है, कर्म रस, प्रेम रस और ज्ञान रस। अगर कर्म शास्त्र के अनुकूल करता है और कमाता खाता और खिलाता है तो कर्म रस भी मिलता है, लेकिन कर्म में अगर सावधानी नहीं है तो वो कर्म रस नीरस हो जाता है। फिर शराब से रस लेगा, जुआ से रस लेगा, दुराचार से रस लेगा, मारपीट से रस लेगा, झूठी गवाहियों से रस लेगा, किसी को तंग करने से रस लेगा, किसी की निंदा करने सुनने से मजा लेगा। तो कर्म रस, प्रेम रस और सच्चिदानंद रस। आपकी तपस्या का तो मैं धन्यवाद करता हूं, और सुबह 9:30 बजे आके बैठ गए होंगे, कोई 9 बजे आए हाथ ऊपर करो, 9 बजे के बैठे हाथ ऊपर करो, है देख लो, हाथ ही लाओ। तो 9 बजे हाजिर हो गए तो कितने बजे घर से चले थे, लेकिन ये कर्म भगवती रस में ले आए, ये कर्म रस सच्चा रस लेने के लिए आ गया। अगर फिल्म के लिए या और किसी ताकत देना दिन के लिए या लवर लवरी के भाव से पहुंचे होते तो ये रस देर सबेर वीरस में गिरा देता, लेकिन ये रस परम रस में ले जाएगा। इसको बोलते आने का कर्म रस शुद्ध हुआ आपका। कर्म में अगर आश्रय ईश्वर का है, महत्व ईश्वर का है, उद्देश्य ईश्वर का है, तो आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। पत्नी बच्चे परिवार के साथ जीते हुए भी अगर आश्रय ऊंचा है, जैसे उद्देश्य है बद्रीनाथ और आश्रय भी भगवान का है, उद्देश्य भी भगवान है, तो रास्ते में अवांतर साधन कोई भी आएगा, बस, गाड़ी, कार, धर्मशाला, नाश्ता, भोजन, उपवास, जो भी है वो सब गौण हो जाएगा। तो एक महासंकल्प को पूरा करने के लिए अवांतर संकल्प, मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बड़ा आश्रम बनाना है, था बड़ा मॉल या फैक्ट्री बनाना है, तो ये बड़ा हो गया उद्देश्य। फिर सीमेंट कहां से आएगा, आर्किटेक्ट कौन होगा, कौन सा फर्नीचर कहां से आएगा, ये सब अवांतर संकल्प है। तो एक तत्कालीन संकल्प होते हैं और एक महासंकल्प होता है। जैसे भूख लगी है क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, किधर जाएंगे, तत्कालीन संकल्प हो गया। प्यास लगी कहां पिएंगे, कैसे पिएंगे, गाड़ी में जाना है, किधर बैठेंगे, कहां जाएंगे, ये तत्कालीन संकल्प है। लेकिन तत्कालीन संकल्पों को इतना महत्व न दे कि महान संकल्प हम भूल जाएं। 9-9 महीने मां के गर्भ में ऊंधे लटके और महान संकल्प पूरा करने का अवसर मिला और महान संकल्प भूलकर तत्कालीन संकल्प को इतना महत्व दिया कि महान संकल्प का पता ही नहीं, तो फिर इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर होता है, ऐ तो खुद चैतन्य बुद्धि में चिन्मय सत्ता स्फुरा रही है, लहरा रही है, जैसे पानी के सरोवर में पानी से बनी बर्फ के टुकड़े तैरा रहे उतरा रहे, ऐसे ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में हमारी बुद्धि और वृत्तियां तैरा रहे उतरा रही और हमको परमात्मा के सुख का पता नहीं, परमात्मा के होने का पता नहीं, परमात्मा का रस मिलता नहीं। फिर नाक के द्वारा रस लो सुगंध का, परफ्यूम का, और विकार पैदा करे। जीवा के द्वारा रस लेते लेते अधिक खाओ बीमार हो। काम इंद्रिय के द्वारा रस लेते लेते काम ही तुच्छ प्राणी बन जाओ और फिर जन्मो और मरो और भूंड बन जाओ, खरगोश बन जाओ, कबूतर बन जाओ, बकरा बन जाओ। अगर इन इंद्रियों गत तुच्छ संकल्पों को, तत्कालीन संकल्पों को महत्व दिया और क्षणिक सुख लिया और महान संकल्प का सत्संग के द्वारा पता न चला तो मनुष्यता से गिरते गिरते राजा नृग किरकिट हो गया, राजा अज अजगर हो गया, और भी कई राजे महाराजे और मनुष्य प्रेत होके भटकते हैं। तत्कालीन संकल्प में जो सुख बुद्धि है, जो महत्व बुद्धि है और जो पूर्ण बुद्धि है, वो भ्रष्ट बुद्धि है। भ्रष्ट होने वाला शरीर और भ्रष्ट होने वाली वस्तुओं को जो सत मानता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जो परमात्मा को सत मानता है बुद्धि बदलती है। फिर भी जो नहीं बदलता, शरीर मरता फिर भी जो नहीं मरता है, मन की वृत्तियां बदलती फिर भी जो नहीं बदलता है, ऐसे परमात्मा को जो सत मानते हैं, तो जो सत होता है वो चेतन भी होता है, और जो चेतन होता है वो आनंद स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, मुक्त होता है, निराकार होता है। निराकार के बिना साकार रह नहीं सकता, लेकिन साकार के बिना निराकार रहता है। वास्तव में आप इतने जो सब दिख रहे हैं साकार दिख रहे हैं, लेकिन आप साकार नहीं है, दिखने भर को है। अगर आप साकार होते तो मरते समय शरीर को ले जाते, मरते समय दिखते, हमारे बाप दादा ताऊ जो भी मर गए तो साकार होते तो दिखते, साकार नहीं थे इसलिए नहीं दिखे। किसी को बोलो नहीं तो मैं अपनी पोल बता दूं, बोलना नहीं किसी को। माँ को बोलते हैं मक्खन दे, हम बोले मक्खन ही मिलेगा जा भगवान से मां, मक्खन मिश्री तो कृष्ण देते हैं। आके पूर के बैठ जाओ, आके पूर के बैठ गए, नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आंख दिखते मक्खन आया कि नहीं, बोलना नहीं बापू ऐसे थे, चुप रहना जरा। तो नहीं आया, फिर आंखें बंद कर कृष्ण गोविंद हले मुलाले हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्देश्य तो मक्खन का था लेकिन आश्रय कृष्ण का लिया, और धीरे से देखा कि थोड़ी आंख बंद हो गई है। माँ चांदी की छोटी सी जुड़ी भी थी, उसमें मक्खन मिश्री रख देती कटोरी में। अरे भगवान, तूने तो भगवान को भोग तो लगा, ले हो कृष्ण तुम खाओ। अब आश्रय और ईश्वर कृष्ण का हो गया, तो कृष्ण की गीता की प्रीति हो गई, और अभी गीता का ज्ञान मेरे काम आ रहा है और बापू जी बन के दिख रहा हूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप अपना आश्रय और उद्देश्य भगवान बना लो, फिर खाओ रो नाचो बाबा जी बनो बेटा जी बनो, आश्रय उद्देश्य ऊंचा कर दो। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत,
सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परं शान्तिं,
तत्प्रसादात् परं शान्तिं
स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्,
स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्।
तुम सर्व प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। मेरी शरण मतलब कहाँ? जो अर्जुन के बागडोर लिए हैं, घोड़ा गाड़ी रथ संभाल रहे हैं, वो नहीं, मेरी शरण अर्थात जहां से मैं स्फुरित होता है उस अंतर्यामी ईश्वर की। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, सर्व भाव से आप जो कुछ करते हैं उसमें आपका भाव ये होना चाहिए कि हमें तो भगवत सुख चाहिए, हमें तो भगवत ज्ञान चाहिए, हमें तो भगवत प्रकाश चाहिए। और इस शरीर छूटने के बाद नहीं, सर्विस छूटे उसके पहले भगवत मुलाकात चाहिए। ये आश्रय उद्देश्य बना लो, आपका झाड़ू लगाना शबरी भीलन की नाई हो जाएगा, भोजन बनाना वही हो जाएगा, आपका मीरा की नाई रोना और हंसना भी बंदगी हो जाएगी। भोजन बनाओ लेकिन आश्रय उद्देश्य पति को बेटों को राजी करने का नहीं, पति और बेटों के भीतर जो ठाकुर जी बैठे ना महाराज, वो प्रसन्न हो जाए और पति का और बेटों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। जब आप कर्म करते और उसका फल अपने शरीर को मजा दिलाने के लिए और अहम पोषने के लिए करते हैं, तो वो कर्म का आश्रय उद्देश्य तुच्छ हो जाता है। लेकिन कर्म करते हैं और उसका फल अपने शरीर की वाहवाही नहीं, अपने शरीर का ऐश नहीं, सामने वाले का हित हो और काम हमारा हो, काज हमार हित तासु होई, काम तो हमारा हो जाए और हित उसका हो जाए। हमारा काम क्या कि हमारा आश्रय उद्देश्य ईश्वर और हित सामने वाले का हो जाए। अब मैं आता हूं सत्संग करता हूं तो आपका हित सोच सोच के ही बोलता हूं, और वहां होता हूं एकांत में तभी भी आपका हित सोचता हूं या तो अपना काम करता हूं भगवत रस। तो काज हमार, मेरा काम हो भगवत मस्ती और हित तुम्हारा हो। तुसी भी राजी असी भी राजी, क्या करे काजी, मैं भी राजी हूं आप भी राजी हैं। आपका हित सोचने से मेरा हृदय खिलता है और आपको भी लाभ होता है। अगर मेरा उद्देश्य होता आपको पटाकर मैं अपना फायदा करूं तो मुझे इतनी बुद्धि इतना योग इतनी आत्म मस्ती नहीं आ सकती। मुर्दे को प्रभु देते कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। बोले कहे दूसरे की भलाई सोचेंगे तो खाएंगे क्या। अरे भाई टूटी फूटी साइकिल भी काम आती है ना, तो उसको भी हवा पानी टायर ट्यूब ये मिलता है, मोपेड को भी ऑयल बॉइल मिलता है, तुम्हारे स्कूटर को भी खुराक मिल जाता है, पुराना स्कूटर भी काम में आता है तो उसको खुराक मिल जाता है। अगर तुम लोगों के काम आ गए तो क्या भगवान तुमको भूखा रखेगा। अरे हम लोगों के इतने काम नहीं आते और सब कुछ मिलता पड़ा पड़ाया फेंक देते नदी में, भगवान का भजन करते हैं फिर इसका आश्रय क्या ले, फेंक दिया फिर भी खिलाने वाला आ गया, अपना कान पकड़ के तमाचे ठोके के भगवान का आश्रय लिए और फिर ये फल फूल साथ में रहते फेंक दिया नदी में। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसे हम पर भी तो नाज हो गया ना, मौज हो गई ना। तो आप पक्का कर लो, आज गांठ बांध दो रुमाल में या तो कपड़े में, बस हमारे जीवन का आश्रय भगवान होगा। मैया बांध लो पल्ले में गांठ, हमारा आश्रय ठाकुर जी है। जो कुछ करेंगे फिर भगवान में डूबेंगे, जो कुछ सत्कर्म करेंगे भगवान की प्रीति के लिए, जो कुछ प्राप्तव्य है भगवान का सुख, जो कुछ ज्ञातव्य है भगवान का ज्ञान, जो कुछ कर्तव्य है भगवान के लिए। पति के लिए रोटी बनाते लेकिन भगवान उनमें है और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। ऐसा नहीं कि मैं उनको वश करूं और बंदर की नहीं नचाऊं मिस्टर को, ऐसा उद्देश्य नहीं। या मिसेस को मैं कपड़े दिलाऊं और वो भोग्या बनाकर कमर तोड़ प्रोग्राम करूं तो आपका आश्रय काम है। कोई बोलते हैं शी इज माई मिसेस, मैं बोलता हूं झूठी बात। बापू जी रियली ही इज माई मिस्टर, मैं क्या, बिल्कुल झूठी बात। मिसेस और मिस्टर का तो आश्रय और उद्देश्य सेक्स होता है, सेक्स की विशेषता से पसंद करते, लेकिन यहाँ आश्रय धर्म होता है, धर्म पत्नी और पति देव। कितना भारतीय संस्कृति का उद्देश्य ऊंचा है, कन्या लक्ष्मी रूपा वर नारायण रूपा, ऐसा करके वो विवाह किया जाता है। बोले वर को घोड़े पर क्यों बिठाते, बोले घोड़े पर इसलिए बिठाते कि बेटा देख आश्रय उद्देश्य भगवान का है तो ठीक, नहीं तो फिर इस माया जाल से भाग। इसलिए घोड़े पे बिठाते कि भाग सके तो भाग, नहीं तो उद्देश्य बना ले। भाग सके तो भाग या तो उद्देश्य सही कर ले। ये मैंने चुटकुला सुना है। गोरखनाथ बोलते हैं हसीबो खेलीबो, ये देख लो गांठ लगी है, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसते खेलते उद्देश्य और आश्रय ऊंचा है तो हंसते खेलते भगवत ध्यान। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, खाए पिए लेकिन किसी में आसक्त न करे, मन फंसने ना दे, मिल गया तो ठीक है, ये हो गया तो ठीक, गांठ ना बांधे कि इसको ऐसा चाहिए आज ऐसा ही चाहिए, टीवी तो रंगीन चाहिए और कमरा तो एयर कंडीशन चाहिए और लाडी तो ऐसी चाहिए, लाडा तो वैसा चाहिए। अरे कितना भी कैसा मिला छूट जाएगा, जो कभी नहीं छूटता है उसको चाहो मत, उसको तो अपना मानकर प्यार करो, काम बन जाएगा, बना बनाया है। कितनी सुंदर लेडी मिले लेडे मिले लेकिन एक दिन रुलाएंगे, ये बात पक्की समझना भैया। जो आश्रय भगवान का लेना हो उस समय अगर पैसे का आश्रय लिया तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आएगा, जो आश्रय भगवान का लेना चाहिए प्रीति, वो अगर यार दोस्तार की तो वहां खटपट होनी है, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि वो हितेशी परमात्मा चाहता है कि तुम शाश्वत आत्मा हो, मेरे हो, नश्वर संसार में उलझो नहीं, इसलिए वहां कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर देता है। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लो। भगवत आश्रय तो लेते हैं लेकिन इनकम टैक्स से बच जाऊं, भगवत आश्रय लेते हैं कि सामने वाले की टांग टूटे, भगवत आश्रय लेते हैं कि पत्नी बढ़िया मिले, पति बढ़िया मिले, भगवत आश्रय लिया लेकिन भगवत प्रीति नहीं है ना, तो ये चीजें मिलेगी फिर भी रोते रहोगे। इसलिए भगवत आश्रय और भगवत प्रीति दोनों हो जाए तो जीवन में द्वंद्व शांत होते जाएंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंदेर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा। जो मूढ़ नहीं है, पदमम अव्यय तत् अव्यय पद, उस पद का नाश नहीं होता। और कोई भी पद अव्यय नहीं है भगवत पद के सिवा। किसी भी पद पे आप बैठो 5 साल 10 साल 15 साल रिटायरमेंट, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल बुढ़े हो गए हटाए गए, लेकिन आत्मपद निराकार नारायण का अव्यय है। न तद्भास्यते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, न शशि को न पावक, न चांद और अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। यद गत्वा निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर मां के गर्भ में हुंडा नहीं लटकना पड़ता। तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है और वो तुम्हारे साथ में ही है। शरीर तुम रख नहीं सकते और मुझे तुम छोड़ नहीं सकते। है, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते उसका उद्देश्य और प्रीति कर दो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, झोली फैला के आपसे ये मांगता हूं दक्षिणा। आप उद्देश्य और आश्रय भगवत सुख कर लो, भगवत कृपा कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, आपका तो मंगल होगा। आपका दर्शन करने वाले को भी मंगलमय सुख मिलेगा, आपकी वाणी सुनने वाले को तीर्थ करने का फल होगा, यज्ञ करने का फल होगा और उसके पितरों को तारने का फल हो जाएगा। आप इतने महान बन जाओगे। खाली ये दो बातें अपने जीवन में लो, बिल्कुल पक्की बात। आप आश्रय उद्देश्य जो जो घना करोगे, बुद्धि आपकी भगवान में प्रतिष्ठित हो, फिर आपको बाहर के ग्रंथ पढ़ पढ़ के विद्या हासिल करने की जरूरत नहीं है, बाहर की टॉनिक खा खा के स्वास्थ्य बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और बाहर का मित्रों का मंडलों का सबका सहयोग लेकर आप आगे सफल हो उसकी जरूरत नहीं। परम मित्र के साथ आपका तालमेल है, स्वास्थ्य भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, और प्रसन्नता के लिए आपको स्मोक करने की जरूरत नहीं है। नाक में से धुआं रेलगाड़ी के नहीं निकाले, कम वक्त कहीं का कहां सुख मिला। वाइन पीने की जरूरत नहीं है। प्रसन्नता के लिए पत्नी के हाड़ मास को या पति के हाड़ मास को नोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रसन्नता मिलेगी। आश्रय उद्देश्य ऊंचा करने से ज्ञान के लिए पोथियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वास्थ्य के लिए टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको सच बताता हूं, प्रसन्नता के लिए दुनिया के विषय विकारों की जरूरत नहीं पड़ती। आप जहां जाएं वहीं प्रसन्नता और मौज, वहीं माधुर्य, बिल्कुल मौज ही मौज हो जाएगी। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो
भगवते
वासुदेवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय शांति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय। जो माधुर्य का देव है, शांति का देव है और सबके दिल में बस रहा है, उस परमात्मा का नाम है वासुदेव। ब्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, इसके एक संकल्प मात्र से
अब वो कैसे है मैं बयान करूं तो मेरी ताकत नहीं। एक आशाराम नहीं है, एक आशाराम की हजार जीव, ऐसे हजार आशाराम मिलकर भी भगवान की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे हो तुम्हारे बाप और तुम उसी की पुत्रियां हो, पुत्र हो। फिर काहे को गम करने के मेरे पास छोटा प्लेट बराबर। अरे अनंत ब्रह्मांड नायक मेरा बाप लगता है ना। ऐसा आश्रय लो, ऐसी प्रीति करो, फिर देखो भजन ही भजन है तुम्हारा। उठत बैठत वही उठाने, कत कबीरा मुसी ठिकाने। कितना जाओगी तीर्थों में देवियां, तीर्थों में भी आजा फसाजा वाले बहुत बैठे हैं। ये चाट खा लो, ये रसगुल्ले खा लो, ये क्या कर लो, ये कर लो, ये वो कर लो। ओ आत्म तीर्थ में आ जाओ लालियां लाले। खूब मौजी मौज है। फिर तो आप बाहर के तीर्थ में जाओगे तो तीर्थक का तीर्थत्व बढ़ जाएगा। तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कहती, हाड़ मास की देह ममा तामे इतनी प्रीति। तो आश्रय प्रभु का लेकिन प्रीति इस हाड़ मास में का करित हो। हाड़ मास की देह ममा तामे इतनी प्रीति, नाक तेरा तोते की चोंच जैसा जरा ऊंचा करके दिखा दूं तो क्या गंदगी भरी है, लीट भरी है, दांत है अनार की कली जैसे, ओ हीरों की कतार, मरे हुए बैक्टीरिया और थूक की बदबू देख ले, सुबह सुबह सूंघ ले विकार भाग जाएंगे। बोले जो बहुत पति के अंदर विकार हो तो पत्नी को एक आध दिन ब्रश कम करके बोले देख लो, दूर भाग जाएगा। इसमें क्या सुंदर है, और जो बुद्धि में प्रकाश दे रहा है वो वासुदेव की सुंदरता से ये जी रहा है। अगर वो कनेक्शन कट हो जाए तो मुर्दा बन जाएगा शरीर, फिर जितनी देर रहेगा उतने बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, उतना ही अशुभ बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते जल्दी करो जल्दी करो, शमशान में ले जाओ। फिर हड्डियां भी घर में नहीं आने देंगे, खुद के पैसों से मकान बनाया लेकिन आपकी हड्डियां मकान में रखना अशुभ मानी जाएगी, चाहे माई हो चाहे भाई हो। ऐसा है बिना वासुदेव की सत्ता स्फूर्ति। तो बाहर के भगवान को देखने के लिए बाहर का प्रकाश उचित है, अच्छा है, समष्टि प्रकाश, लेकिन व्यष्टि और समष्टि प्रकाश को प्रकाशित करने वाला वासुदेव का प्रकाश बुद्धि में जब आता है तो चिन्मय भगवान बन जाते, साकार सगुण भगवान बन जाते। साकार भगवान सगुण साकार बाहर दिखते हैं, लेकिन सगुण चिन्मय भगवान हृदय में दिखते हैं। इसलिए गणपति दादा मोरिया वालों को भी इतना इतना शाबाश और धन्यवाद, और माता जी को मानने वालों को भी धन्यवाद, शिव जी को मानने वालों को भी धन्यवाद, कृष्ण के आगे और झूलेलाल के आगे नाचने वालों को भी धन्यवाद, और मिट्टी के शिव जी बनाकर ओम शम भावाय च मयो भावाय च नमः शिवाय च शंकराय च ऐसे भूदेवों को भी धन्यवाद है, क्योंकि वो बाहर से मिट्टी के भगवान दिखते हैं लेकिन जब आंख पूर के बैठेंगे तो बुद्धि में चिन्मय भगवान का रस आएगा, चिन्मय वासुदेव और शिव का प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद से बुद्धि पुष्ट होगी। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। कितना भी दुखी आदमी पूजा करके चुप बैठे तो ऐसा दुख रहेगा क्या, ऐसी चिंता रहेगी क्या? आप कीर्तन करते कितने भी दुखी और कीर्तन के माहौल में आ गए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय
बम 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 ओम नमः शिवाय बम बम बम
ओम नमः शिवाय
शिव 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 ओम नमः शिवाय
शिव 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 ओम नमः शिवाय।
भक्ति भगवान की हो रही है और आश्रय भी भगवान का होगा तो बुद्धि में भगवत रस आएगा। आश्रय संगीत का है अभी, लेकिन भगवत आश्रय की मुख्यता है। प्रीति म्यूजिक में नहीं, प्रीति प्रभु में। बाहर से नहीं भी बोलोगे तभी भी बुद्धि में उसका रस आएगा। रोक और पोप में आश्रय लवरी का है, प्रीति सेक्स में, प्रीति विकारों में है, तबाही हो जाती। और यहाँ आश्रय शिव जी का है, आश्रय म्यूजिक का भी है, लेकिन म्यूजिक का आश्रय गौण है, प्रभु का नाम का आश्रय विशेष है, शिव का, राम का आश्रय शुद्ध है और प्रीति परमात्मा से। इसलिए डॉक्टर डायमंड को ये सत्य अनुभव में आया कि रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन भारतीय कीर्तन पद्धति से जीवन शक्ति का विकास होता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम बम, ओम नमः शिवाय,
बम बम बम, ओम नमः शिवाय,
शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय,
शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम बम, ओम नमः शिवाय,
बम बम बम, ओम नमः शिवाय।
प्रभु तेरी जय हो, तू वासुदेव, तेरी एड्रेस मिल गई मेरे लाला, मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला, मेरे अच्युता, मेरे केशवा, मेरे माधवा, मेरे दीन दयालु, दीन बंधो, दीना नाथा, मेरी डोरी तुम्हारे आता। ये चिन्मय हो गए, बाहर के प्रकाश में दिखने वाली कैबिन और बाहर का ये पंडाल गौण हो गया, चिन्मय भाव शुरू हो गया। ये वासुदेव का रस है। आनंद देवा, हे मधुमय, हे प्रेममय, हे ज्ञान स्वरूपा, हे आनंद रूपा, हे गुरु रूपा, हे शिव रूपा, तू शिव का रूप, तू गुरु का रूप, तू वासुदेव, तू राम का रूप, तू कृष्ण का रूप, प्रभु माधव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम बम, ओम नमः शिवाय,
बम बम बम, ओम नमः शिवाय,
हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम वासुदेव ओम गुरुदेवा ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम गणेश जी ओम राम जी ओम श्याम जी ओम शिव जी ओम 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 हे वासुदेव है चिन्मय आदि भौतिक में से चिन्मय जाना इसी का नाम है उन्नति। अचिन्मय में से आदि भौतिक में उलझना इसका नाम है अवनति पतन। स्थूल में से सूक्ष्म में जाना इसका नाम है उत्थान। सूक्ष्म में से स्थूल में उलझना इसका नाम है पतन। पानी का बाष्पीभूत होकर ऊपर चढ़ना यह है शुद्धिकरण। ऊपर से नीचे गिर के गटरों में जाना इसका है अशुद्धिकरण। तो वेद में आया है कि मनुष्य तू आलस छोड़ प्रमाद छोड़ और ऊपर को चढ़ आगे बढ़। यजुर्वेद में भी आया है ऋग्वेद में भी आया है और ऐसा ऊपर उठ कि जहां सत और चित अलग ना रहे। जो सत्य है वही चित्त है और फिर चित्त में टिके आनंद तुझे आने लगे तो बाहर आनंद के लिए भटक कर भिखारी मत बन। यजुर्वेद का सूक्त 70वां और मंत्र 72वां है। ज्योतिषाम दिवम उत्तभान तेजसाह दिश उद दृहम। ए साधक तू अपने सुंदर पंखों से उड़ने वाला उन्नति करने वाला और गौरवशाली सत्व है। तू पृथ्वी की पीठ पर बैठना और अपनी ज्योति से अंतरिक्ष को भर दे। अपने प्रकाश से तू द्युर्लोक को ऊपर उठा दे। अपने तेज से दिशाओं को सुदृढ़ कर दे। हे जीव तू परमात्मा की शक्ति से संपन्न है तू ऊर्ध्वगामी बन। अधो गामी मत बन कायर मत बनना पलायनवाती मत बनना तू गौरवशाली बन क्योंकि तेरे में अनंत की शक्तियां छुपी है। महत्व बुद्धि जिसमें होती है उसका आश्रय होता है। महत्व बुद्धि है भगवान बद्रीनाथ की यात्रा का। महत्व बुद्धि है भगवान विष्णु में तो मैं बद्रीनाथ जाऊंगा। महत्व बुद्धि है शिव में तो मैं केदारनाथ जाऊंगा। महत्व बुद्धि है माताजी में तो फिर मैं माताजी के मंदिर में जाऊंगा। तो आपके जीवन में महत्व बुद्धि जिधर की बनेगी गौण कर्म अथवा गौण आश्रय भले आप कितने भी लो आश्रय कैसे भी लो लेकिन जहां महत्व है वे सारे आश्रय उधर समेट लोगे। आपकी महत्व बुद्धि थी सत्संग में आपके मन की सोच विचार के कैसे पहुंचे द्वारिका। फिर आपने रेलवे का उपयोग किया कार का उपयोग किया दोस्त का उपयोग किया टेलीफोन का उपयोग किया ये सब आश्रय लिए लेकिन आश्रय भी उस महत्व के लिए लिए तो सारे आश्रय आपके भक्ति में हो गए। अगर महत्व बुद्धि शराब खाने में है अथवा दुराचार में है तो जो भी आप आश्रय लेते हैं वो सारा चिंतन आपका वो हो जाता है। इस बात को आप बिल्कुल मान लोगे पक्की बात। तो आप आश्रय और महत्व आश्रय नौकरी का लेते हैं पत्नी की सेवा का लेते, पति की सेवा का लेते, लेकिन महत्व शिव जी का, भगवान का, किसी भगवान का मानते, तो सारे आश्रय उधर को मुड़ जाएंगे। तो संसार में अगर आप कोई आश्रय लेते हैं राग का और द्वेष का, तो आपका राग और द्वेष बढ़ता जाएगा। मेरा कोई शत्रु है और मेरे को तंग करता है, तो अगर भगवान का महत्व नहीं है मेरे जीवन में, तो मैं न जाने क्या क्या नीच आश्रय लेकर भी शत्रु को मिटाने में लगूंगा। अगर मेरे जीवन में भगवान का आश्रय है, तो मेरे से वो नीच कर्म नहीं हो सके। अगर होते हैं तो भगवान का आश्रय इतना जोरदार नहीं है, सीधी बात है। तो अपने जीवन में भगवत आश्रय का विकास हो और भगवत आश्रय का रस मिले, इसलिए पूजा पाठ उपासना होती है। और जन्मते ही सब भगवत आश्रय के हो जाएं, ये संभव नहीं, संस्कार मिलते हैं। सिंधी के कुल में जन्मेगा तो झूलेलाल भगवान का निमित्त बनकर भगवत आश्रय आएगा, पंजाबी में होगा तो गुरुद्वारे या और कोई कृष्ण राम आदि का आश्रय। तो ये आश्रय अगर ऊंचे आ जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी क्रियाकलाप चिन्मय हो जाएगी। मैंने आश्रय लिया झूलेलाल का, आश्रय लिया गणपति का, आश्रय लिया कोई भगवान का, तो उस समय तो मेरी आंख आदि भौतिक, प्रकाश आदि भौतिक वृत्ति भी मन की, फिर वो पूजा पाठ करके मैं जब शांत बैठूंगा तो उस समय आंख बंद हो जाएगी। बाहर के प्रकाश से हम भीतर आ जाएंगे, बाहर की मूर्ति से हम भीतर आ जाएंगे, बाहर की आंख की गुलामी नहीं पड़ेगी। और फिर भी आंख बंद करके बैठेंगे, जप करेंगे या ध्यान करेंगे, तो हमारी बुद्धि में जो रस आएगा, जो सुख आएगा, वो भौतिक आश्रय लेकर हम परमार्थिक आश्रय में, चिन्मय आश्रय में पहुंच जाएंगे। और एक बार चिन्मय आश्रय का रस मिला तो हजार हजार विघ्न बाधाएं और हजार हजार श्रद्धा तोड़ने का व्यवहार आए, फिर भी चिन्मय आश्रय जिनका खुल गया, वो भगवान का आश्रय छोड़ नहीं सकता, गुरु का सत्संग छोड़ नहीं सकता, आध्यात्मिक उन्नति छोड़ नहीं सकता, क्योंकि चिन्मय आश्रय है। शुरू में तो भले आदि भौतिक आश्रय लिया, राग द्वेष में जी रहे तो राग वाली चीजें लाए, मूर्ति में राग रखा, लेकिन वो मूर्ति का राग चिन्मय में ले गए। हम ध्यान करते तो उस समय बाहर की मूर्ति नहीं होती, फिर भी हृदय में चम चम चमकता है, मजा अच्छा लगता है, आनंद होता है, शांति मिलती। इसी प्रकार गुरु मंत्र लिया, गुरु मंत्र लिया और जप किया, तो पहले तो आश्रय लिया कान का, जप में जीभ का, लेकिन गुरु मंत्र जपते जपते जब आप थोड़े शांत हो जाते हैं, प्रीति पूर्वक जपते हैं, तो आपको चिन्मय सुख मिलता है। तो राग वाला सुख आपको दुख देता है, द्वेष वाला भी आपको तपाता है, लेकिन ये दुख और सुख में सम रहकर चिन्मय परमात्मा के साथ एकाकार करता है, इसलिए मंत्र दीक्षा की बड़ी भारी महिमा है। शबरी भीलन, एक तो भील जाति और फिर भील जाति में भी कुरूप शिरोमणि शबर जाति, और ऐसी शबर जाति की कन्या मतंग ऋषि के आश्रय में आ गई, कितनी महान बन गई दुनिया जानती। श्री राम जी उसके झूठे बेर कहते हैं और बखान करते हैं कि आज मैंने, ओ मेरी माँ कौशल्या जी ने जो एक बार मोहन भोग दिया था, वो मोहन भोग की खबर तुम्हारे बेरों से आ रही माँ, सभी और कुछ दे, थोड़ा और दे। क्या था, इसने मतंग ऋषि के सत्संग का आश्रय लिया, लकड़ियां चुनकर आती, मतंग ऋषि की सेवा का आश्रय लिया। तो उच्च आश्रय हमको उच्च पद पे पहुंचा देता है और नीच आश्रय हमको दुर्गति में ले जाता है। तो हमने कोई भी आश्रय लिया तो राग और द्वेष से ऊपर होने के लिए भगवान की भक्ति है, राग और द्वेष से पार होने के लिए भगवतीय सेवा है। राग और द्वेष से तो हम पछते रहते, भगवान नाम है, राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए हम भगवत कथा में आते। अब भगवत कथा का हमने आश्रय लिया, भगवत नाम का आश्रय लिया, भगवान के देवी कार्य, संत के देवी कार्य में जुड़ने का हमने आश्रय लिया, वो हमारा उत्तम आश्रय, उत्तम चिन्मय सुख में, चिन्मय ज्ञान में, चिन्मय आत्मा में हमको पहुंचा देगा। ये होता है कर्म। तो कर्म से आप नीच गति को भी जा सकते और कर्म से आप उत्तम महापुरुष भी बन सकते और भगवान के सखा भी बन सकते, भगवान के स्नेही बन सकते, भगवान के मित्र बन सकते, भगवान के बाप बन सकते, भगवान की माँ बन सकते, अरे भगवान के गुरु और दादा गुरु बन सकते। ऐसा कर्म का विधान है। आप आश्रय ऊंचा लें तो बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं, जो भगवत सुख से, भगवत सामर्थ्य से, भगवत ज्ञान से बिछड़े हैं वे दर बदर भटकते, न जाने किस किस योनि में कहां कहां पूंछ हिलाते, न जाने किस किस की गुलामी करते। जो एक की शरण जाता है उस वो निहाल हो जाता है, और एक की शरण छोड़कर अनेकों की शरण जाता है वो बेहाल हो जाता है। बेकारों की शरण, शराब की शरण, व्यसनों की शरण, बेईमानी की शरण, कपट की शरण, कितनी शरण लेकर रस लेना चाहता है लेकिन जीवन नीरस रहता है। एक वासुदेव की शरण लेता है तो रस मैं जीवन खुद का तो होता है, दूसरों के लिए भी रसदाता हो जाता है। थोड़ी भी समझ होगी तो इस बात को मान लोगे आप तुरंत। अगर थोड़ी भी अक्ल है और थोड़ी भी पुण्याई है तो ये आपके अनुभव की बात। जो ईश्वर का रस नहीं लेना जानता, ईश्वर की शरण नहीं जाता, शरण क्या, कोई मूर्ति के पैर पकड़े या किसी मंदिर में जाकर ठाकुर जी के पैर पकड़े। शरण का मतलब है जहां से आपका मैं स्फुरित होता है, भगवत आश्रय लेकर उस मैं को भगवान में, अर्थात मैं के ऊपर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐसा हूं वैसा हूं ये परते हैं, वे परते हटते जा रहा, आप उसमें गहरे उतरते जाए। एक बार तुकाराम महाराज ने कहा कि भगवान आप तो बोलते हो तो मेरी शरण आ जाओ, लेकिन आपकी शरण कहाँ है, कैसे आऊं मैं, तुम्ही सांगा माजा पांडुरंगा माजा विठला, तुमची शरण कुटे आए। एक नाथ जी को भी लगा कि भगवान तुम्हारी शरण तो हम आए लेकिन कैसे आए, क्या जटाधारी बन जाए तो आपकी शरण है कि मुंडन कराने से आपकी शरण होगी, मंदिर में बैठना आपकी शरण होगी, अथवा सीताराम सीताराम नमः शिवाय की चादर ओढ़ने से आपकी शरण होगी, तुम ही बताओ मेरे विठल मेरे पांडुरंग, ऐसे भगवान के सामने बैठते हो आपकी शरण क्या है। एक नाथ महाराज कुछ दिन ऐसे ही भगवान से प्रश्न करते करते बैठते 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 गए, अंदर से प्रेरणा हुई कि ये जहां से पूर्णा उठता है मैं उसी में शांत होना ही मेरी शरण है। अपना देह का अहम छोड़ना और शुद्ध मैं को स्वीकार करना ये मेरी शरण है। फिर तुकाराम महाराज को प्रश्न उठा कि जगत में सब प्रकार से सुखी कौन है, पूर्ण रूप से सुखी कौन है, पत्नी मिलने से भी पूर्ण सुखी नहीं है और पत्नी त्यागने से भी सुखी नहीं, ब्रह्मचारी रहने से भी पूरे सुखी नहीं, राजा नेता बनने से भी पूरे सुखी नहीं, तो जगत में सर्व प्रकार सुखी कौन आए, मना तुम ही शोधु नहीं पाए, हे मन तुम खोजो। विठल से पूछते पूछते खोजते 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 खो गए, जिससे खोजते थे उसी के निकट हो गए, और संत प्रवर के हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ तुकाराम का। दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत, अपनी दृष्टि में भगवत ज्ञान भर दो और सारा भगवत विलास है, वो आदमी सुखी रहता है। तो ये बात उनके हृदय में आई, लेकिन गीता में ये बात ने गीता ने पुष्टि कर दी, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अंदर से तो ये आया, लेकिन कथा में सुना तो दूसरे दो कुछ दिन के बाद सत्संग में ये बात आ गई। तो अपना अनुभव जो सुरमा स्फुरना है, अपना जो स्पंदन है, अपनी जो अंतर प्रेरणा है, वो शास्त्र और संत सम्मत हो गई। तुकाराम महाराज तृप्ति का अनुभव करने लगे। तुकाराम महाराज को जब दीक्षा मिली तो जाकर ठाकुर जी को उल्हावना दिया, ठाकुर जी से छेड़खानी की। मोहब्बत जोर पकड़ती ना तो ठाकुर जी से भी शरारत कर लेती, प्रेम जोर पकड़ना था तो भगवान से भी छेड़खानी होती। हम भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो जब दीक्षा मिली तो तुकाराम चले गए भगवान के मंदिर में और भगवान को उल्हावना दिया। माजा पांडुरंगा आता तुम्ही कुठे जाणार आहे, तुमची चोटी माझे गुरु ने दिली आहे, माझ्याकडे आहे, तुमचा पवित्र मंत्र माझ्याकडे आहे। मंत्र गुरु ने दे दिया मतलब ठाकुर जी तुम्हारी चोटी दे दी, चोटी तो समझते ना बाल। अब तुम कहां जाओगे, कितना भी भागो चोटी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब जाओगे कहां, चाहे मिलो चाहे न मिलो यहीं बैठे रहो, लेकिन तुम्हारे नाम रूपी चोटी माजा कड़े आए। इस प्रकार भगवान से गुनगुनाते और मजा लेते। तो भले छेड़खानी है लेकिन मन में तो भगवत भाव बनता था, लवर लवरी का भाव नहीं बनता था, किसी के बुराई का भाव नहीं बनता था। तो जिस किसी प्रकार से आपके मन में भगवत भाव बनता जाए, हीन भाव दीन भाव अहम भाव मिटता जाए और भगवत भाव की संख्या बढ़ती जाए, जैसे नारद जी को श्राप था कि कहीं भी ढाई घंटे घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन द्वारका में वो श्राप नहीं बाधित हो जाता था क्योंकि भगवत सत्ता का प्रभाव था। तो कहीं भी गए फिर दे द्वारका, कहीं भी गए दे द्वारका, वृंदावन जाओ खबर ले आओ फिर आए द्वारका, जाओ जरा बद्री विशाल खबर ले आओ फिर द्वारका, जाओ जरा मथुरा खबर ले आओ फिर द्वारका। तो जाने की जगह 50 लेकिन आने की जगह एक, तो 50 मार्ग एक तरफ और एक एक मार्ग बिखरा हुआ। ऐसे आप लोग जो भी कुछ करते हो घूम फिर के अपने मन को भगवान में ले आओ, अपनी बुद्धि में भगवान की प्रतिष्ठा और भगवान के महत्व की स्मृति करो। वकील साहब आपने बहुत बढ़िया कर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा केस और आप जीत लोगे। बोले ठीक है भगवान की दया है। ऐसा कुछ लोग तो सुनाने के लिए कहते हैं और कुछ हृदयपूर्वक कहते तो उनकी बुद्धि में भगवान की प्रतिष्ठा होने लगती। आज मन इतना बेईमान हो गया है कि नर्स की जो असिस्टेंट होती है, देख मैं बोलती थी ना लड़का होगा, देख हो गया ना, अगर तू बोलती थी लड़का होगा लड़का होगा, लड़की हुई तो बोले क्या करे भगवान की मर्जी, केस जीत गए तो मुंशी बोलता देखो मैंने बोला था ना जीत जाओगे, वकील बोलता बोल लो मैंने बोला था ना जीत जाएंगे, अगर हार गए तो बोले क्या करे भगवान की मर्जी। इतना मन बेईमान हो गया है, यश तो स्वयं स्वाहा और विफलता आहा ले भगवान, तो उद्देश्यहीन है। अहम पुष्टि का उद्देश्य है, अहम का आश्रय भगवत आश्रय नहीं। भगवत आश्रय होगा तो सफलता भगवान की कृपा से, विफलता हमारा प्रमाद या प्रारब्ध लापरवाही। यशोदा जहां भी सफलता सुख या मंगलमय दिखे भगवान को यश दे, तो यशोदा के हृदय से भगवान लिपटते जाते। आपकी बुद्धि में भगवान का महत्व रख दो, भगवत आश्रय रख, और वास्तव में सबका आश्रयदाता भगवत सत्ता है, लेकिन जो मानते हैं उसे विशेष भगवान की प्रीति मिलती है, भगवान का ज्ञान मिलता है, भगवान का सहयोग मिलता है। नहीं मानते उसको सामान्य रूप से मिलता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हमको सामान्य मिलता है, लेकिन हम विशेष इंस्ट्रूमेंट लगाते सोलर लगाते कुछ लगाते तो सूर्य का विशेष प्रकाश मिलता है। ऐसे ही भगवत आश्रय लेना मतलब भगवत कृपा के लिए सोलर लगाना है, और सोलर जितना तुम्हारा हाई फाइव उतना भगवत कृपा का। वो जमाना था सोलर सिस्टम से जहाज चलते थे, ऐसा आता है 1000 माइल की गति से वो जहाज भाग सकते थे, लिखा है ग्रंथों में। भरद्वाज ने उसकी खोज की थी। अंशु बोधनी ग्रंथ में आता है। तो अभी जो सोलर सिस्टम या ये विकास हुआ, ऐसे कई बार विकास हुए फिर विनाश में आए, विकास हुए विनाश में आए। तो विकास विनाश ये प्रकृति की उथल कूद होती रहती, लेकिन अविनाशी का अनुभव नहीं हुआ तभी तक इनमें थप्पड़े खाते रहते। अविनाशी का अनुभव हुआ तो बस हो गए पार। गुरुत्वाकर्षण के नियम के नीचे होते तो चढ़ उतर होती, आकर्षण गुरुत्वाकर्षण से पार गए तो फिर ऐसे आपका मन बुद्धि प्रकृति के आकर्षण में है तो चढ़ उतर नीच ऊंच योनियों में भटकना, सुखी दुखी होना। अगर भगवान से आकर्षित हुए तो धीरे धीरे भगवत सुख भगवत ज्ञान भगवत आनंद से तृप्त हो जाओगे। चढ़ उतर बाहर दिखेगी लेकिन अंदर से तृप्ति होगी। तो घर में चलते फिरते हरे राम 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 हरे हरे, घर में कलयुग के दोष भाग खड़े हो जाएंगे। ये सासू ऐसी है, बहू ऐसी, इसको ऐसा बोला था, नौकरानी को ऐसा करके चिंतन करके पच पच के मरने की जरूरत क्या है। चलते फिरते नौकरानी से ठानी बेटा बेटी चालू कर दो आज से, देख लो मजा।
हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
नारद जी कलयुग के दोषों से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि लोग तो आटा दाल कपड़ा लत्ता और मकान दुकान बनाने में इतने उलझे हैं कि इनको पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य और जीवन का रस रस दाता है। और कभी उबते हैं तो तीर्थ आदि में जाते हैं तो वहां तीर्थों में भी चाट पकोड़े समोसे ये वो आदमी और फिर ये भगवान बड़ा और इधर दक्षिणा ये करो। मनुष्य जीवन ऐसे ही चला जाता है उलझ उलझ के नाथ चारों तरफ। ये कलयुग ने और कलयुग के भाई अधर्म ने चारों तरफ पैर पसारे हैं। कहीं तो आस्था नहीं, और आस्था है तो सच्ची प्रीति या सुख उद्देश्य ऊंचा नहीं। आदमी उलझ उलझ के थक रहे हैं और जीवन नष्ट हो जाता है। और कई मूर्खों को तो पता भी नहीं कि जीवन दाता का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि मिली, पैसे कमाना और ढेर करके मर जाना और बेटे विलासी कर देना, ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो बेटों की तबाही कर रहा है, तो बाप का पैसा बेटे बेटियों की बुद्धि मार देगा। अति सामग्री अति भोग बेटे बेटियों के विकास में रुकावट। तो कोई तो अति भोग और अति सामग्री दे रहे हैं और कोई अतिशय गरीबी में तबाह हो रहे हैं। कोई अति धन और सुविधा में खप रहे हैं तो कोई अति असुविधाओं में खप रहे हैं। और कोई मध्यम वर्गीय तो कहीं तीर्थ बीर्थ में जाते तो वहीं समोसे पकौड़े में और इधर उधर के उसमें उलझ रहे हैं। नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। ब्रह्मा जी ने करमंडलों से जल लिया, तीन आचमन समाधि लगाई, इंद्रिया मन में मन बुद्धि में बुद्धि जीवत्व में जीव ब्रह्मत्व में लगाया, जहां से सारी सत्ता और ज्ञान हो, जहां से सृष्टियां पैदा हो के लीन हो जाती, उस पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए। अब ब्रह्मा जी की आंखों में चमक आ गई, वत्स उपदेश दिया और वो उपदेश बन गया कलिमल तारणो उपनिषद। कलयुग के दोषों को, कलयुग के मैल को कलि संतरणी उपनिषद बनी। नारद जी को उपदेश दिया और बोले फिर आम आदमी इस उपदेश ने, तो बोले बस हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले क विधि, इस मंत्र जपने की विधि क्या? बोले ना विधि, कोई विधि नहीं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जैसा भी मुंह हो हाथ हो चलता जाए। तो बच्चों को भी सिखा दो ना, बच्चे प्यारे हो जाएंगे। हले राम राम हरे हरे, राम 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 कृष्ण 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 गोविंद माधव अच्युत केशव। लो आश्रय ऊंचा हो गया, उद्देश्य भगवत शांति होगी, क्या कठिन है। तो कभी कीर्तन से चलते फिरते गुनगुनाते, कभी किताब पढ़ते, कभी शास्त्र पढ़ते, कभी जीवा ऊपर लगाते, कभी त्राटक करते, कभी सत्संग में आते, कुल मिलाकर अलग 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 काम करते करते, जैसे व्यापार धंधा करने वाला अलग अलग चेष्टा करते हुए भी दिन भर उद्देश्य उसका पैसा कमाना होता है, ऐसे उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति कर दीजिए, बस हो गया। तो भीतर आप वासुदेव को बसाओ, बसे हुए हैं खाली प्रगटाओ। जैसे लकड़ी में आग छुपी और प्रकाश छुपा है लकड़ी में, ऐसे ही तुम्हारे अंदर वासुदेव का सामर्थ्य और रस छुपा है। आप बाहर जो भी लेते देते हैं, फिर भीतर सोचो कि लेना देना हाथों ने पैरों ने आंखों ने इंद्रियों ने किया, उसको सत्ता मन के पुरने से आई, मन के पूर्ण बुद्धि के निर्णय के अनुसार हुई। और बुद्धि में कौन है? कौन है बुद्धि का प्रेरक? कौन है बुद्धि का प्रकाशक? जहां से मैं उठती वो कौन है? मैं कौन हूं? मैं स्फुरित होता है, मैं मर जाऊं तो सुखी रहूं, तो मरने के बाद भी मैं तो हूं, तो वो मैं कौन हूं? मेरे बेटे का ख्याल करना, मेरी पत्नी का ख्याल करना, मुझे अब नहीं जीना, मैं ये चला, मैं मर जाऊं तो सुखी हूं, तो वो मैं कौन हूं? अथवा मैं ऐसा बनूं तो सुखी हूं, वो मैं कौन हूं? बनना तो बिगड़ जाएगा, मिलना बिछड़ जाएगा, लेकिन मैं तो रहूंगा। मैं का कभी अभाव नहीं होता है, यह और वह सदा रहता नहीं, यह गजरा है और वह फलाना है, लेकिन मैं से ही तो सिद्ध होगा। यह नरक है और वह स्वर्ग है, लेकिन मेरे अस्तित्व के बिना नरक और स्वर्ग तो नहीं दिखेगा ना। तो अपनी मैं को खोज लो लाला लालिया, वो मैं चिन्मय परमात्मा का ही ठिकाना है, वही मैं वासुदेव है, वही मैं तुम्हारा माई बाप है, और वही मैं मेरा भी वैसे का वैसा है। मैं जहां से उठता है उसमें गहरे उठो, गहरे पे जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अपने मैं को खोजो, दुख आया आप उसमें उलझो नहीं, मैं उसको जानता हूं, आप दुख से बच निकलोगे। चिंता आई आप उससे जुड़ो नहीं, चिंता क्यों आई उसका उपयोग करो और उससे रास्ता बच के निकलो। क्रोध आया मैं क्रोध को देखता हूं, आप क्रोध से बच निकलो। भय आया आप भयभीत न हो, मैं भय को देखता हूं, आपका तो मंगल होगा लाला लालिया, आपकी वाणी और आपकी मीठी नजर पड़ेगी, उनके भी पाप ताप कटेंगे, और आपकी अगर कोई पापी से पापी आदमी का मुर्दा जल रहा है उसके धुएं पर भी आपकी नजर पड़ गई तो उसकी दुर्गति से सदगति होने लगेगी। ऐसा आपका मैं अमर है, मधुमय है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय अदा कर, नानक ब्रह्मज्ञानी सब का ठाकुर। तुम ठाकुर तुम पै अरदास, वो सब का ठाकुर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें अपनी मैं को मिला हुआ पाओगे। जैसे लहर सागर से मिली है, सूर्य की किरण सूर्य की खबर है, सरोवर की अंजलि सरोवर का आचमन सरोवर की खबर है, ऐसे आपकी मैं वासुदेव की खबर है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ये सत्संग का पुण्य आपको कितना होता है ये कोई दुनिया की तराजू तोल नहीं सकती। ब्रह्मा जी तराजू बनाए तो उनकी तराजू टूटे बिना रह नहीं सकती, ऐसा ये सत्संग का फल है। ब्रह्म ज्ञान का आप सत्संग सुन रहे हैं। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सारा दान पुण्य हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में आपका मन टिक गया तो आपका इतना भारी पुण्य होता है। तो एक होता है कर्म। कर्म अगर आश्रय और प्रीति ऊंची है तो वो कर्म आपको ऊंचे से मिला देंगे। आप कर्म करते हो उसका फल अगर अपने तरफ खींचते हैं तो आपको विक्षेप होगा, आपको भय होगा, आपके दुश्मन बनेंगे और दुश्मन आपको परास्त कर देंगे। अगर आप कर्म करते, अब मैं सत्संग करने का कर्म कर रहा हूं और इस सत्संग में इतने लाखों आदमी आ रहे हैं, अगर मेरे को पैसे मिल जाए, मेरे को ये हो जाए तो कर्म का फल मैं अपने तरफ खींचूंगा तो मैं भयभीत हो जाऊंगा और मेरी धीरे 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 आदत बिगड़ जाएगी। मैं शराबी हो जाऊंगा, कबाबी हो जाऊंगा, जुआरी हो जाऊंगा, न जाने क्या क्या हो जाऊंगा। अगर मेरे कर्म का फल समाज रूपी देवता में मैं बांटता हूं तो वासुदेव ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि समाज रूपी देवता में वासुदेव बसा है। मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके कर्म का उद्देश्य अगर आप अपने तरफ खींचते फल, तो आप कितने भी बुद्धिमान और कितने भी आयोजक, संयोजक, डायरेक्टर ये वो हो जाइए, आखिरी बुढ़ापे में आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, संसार से विलोप हो जाएंगे। अगर आप अपने कर्म के फल को ईश्वर अर्पण कर देते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो आपके कर्म में चार चांद लगने लग जाएंगे। चाहे फिर आप तीन पड़े हो चाहे एक भी नहीं पड़े हो, आप ईश्वर अर्पण कर्म कर दीजिए। शबरी ने यही तो किया, मीरा ने यही तो किया, रहीदास ने यही तो किया, और क्या है। अपने कर्मों का फल अपने तरफ मत घसीटिए। मेरे को पद मिले, मेरे को, मैंने पिताजी की चंपी करता था तो मेरे को पुण्य मिले या पिताजी की संपत्ति मिले, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने गुरुजी के देवी कार्यों में तन मन धन को रगड़ा, मेरे को गुरुजी की कोई धर्मशाला या कोई आश्रम या ट्रस्ट मिले, मैंने कतई नहीं सोचा। जिन्होंने सोचा वो तो विफल हो गया, और मैंने नहीं सोचा तो मेरे तो कदम कदम पे सफलता चरण चूम रही है, बिल्कुल पक्की बात है। आप कर्म तो करिए लेकिन कर्म का फल अपने व्यक्तित्व के तरफ न लाइए, ईश्वर के तरफ भेज दीजिए। आप ईश्वर से मिल जाएंगे, और व्यक्ति के तरफ, अपने व्यक्तित्व के तरफ लाए कर्म के फल को भोगने के लिए, तो आप तुच्छ व्यक्ति। मैं लंकापति रावण, मैं हिरणाकश्यप हूं, अंत क्या हो गया। तो आप कर्म का रस लीजिए, उसमें आश्रय और प्रीति ईश्वर की रख लीजिए। मैंने मकान बनाने का सोच लिया है तो ये मुख्य उद्देश्य हो गया। अब गौण कर्म है, सीमेंट कहां से आएगा, ईंट कहां से आएगी, फर्नीचर कहां से आएगा, ये गौण कर्म उसके साथ जुड़ गए। उद्देश्य मेरा मकान है, बाकी गौण कर्म। ऐसे ही उद्देश्य भगवत शांति पा लीजिए, उद्देश्य मुक्ति रख लीजिए, उद्देश्य परमात्मा को पाने का रख लीजिए, आपके छोटे छोटे कर्म भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। हीन उद्देश्य मत रखिए, इस शरीर का मैं विशेष बनकर दुनिया में नाम करूं, ये हीन उद्देश्य है। अरे शरीर जन्मा नहीं था, कोई नाम नहीं था, और बाद में भी कोई नाम नहीं रहेगा। और हाड़ मास के शरीर का नाम, ये मेरा नाम है, ये भरम मिटा दो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम निराकार हो। नाम साकार का है, वो रखा हुआ है। मेरा नाम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, लेकिन ये टिकेगा कब तक, और नाम तो झूठा है। आसुमल की जगह पर अर्जुन नाम रख देते तो मैं अपने को अर्जुन मानता, मोहन रख देते तो मोहन मानता, भूरा रख दिया तो मैं अपने को भूरा मानता था। उस समय बहुत गोरे गोरे थे, भूरो 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 भूरा हिडाचा, तो हम जाते थे। फिर भगवान भगवान मानते थे, 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में कुछ ऐसा बोल देते और ये बात हो जाती। तो किसी माई के दो बेटे जेल में गए और वो माई आई मत्था टेकने, बोलो मेरा बेटे सब गए, आ जाएंगे भगवान के, और बेटे जल्दी आए तो वो माई आई और पैरे लगने लगे, और मेरे को तो पता भी नहीं जिसने बुलवाया वो जाने, मैंने इस भाई के बेटे छुड़वाया और मेरे एक पूजा हो रही है तो मैं फंस मरता। एक दिन एक माई आई, बोले हे भगवान सुखदाई, बड़े पुत्र दो जेल में खून केस में, बोले आंसू सुख पावेंगे जल्दी निर्दोष छुटावेंगे, बेटे आए मां भागी आंसू मल के पाओ लागी, और मैं लगता गया अच्छा बेटा कल्याण हो। तो बकरी डब्बे में थी, जिसने बुलवाया वो जाने, मैं काहे को अपने सिर पर लूं, तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ, वो मुर्दा जीवित हो गया तो भगवान तुमने करवाया, मैं क्या करता हूं। तुलसीदास के जीवन में भी ऐसे कर्म हो जाते थे। तो उद्देश्य आश्रय और प्रीति भगवान के साथ करो, मैं भगवान के नाम से भगवान के आश्रय आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं। तो कर्म में आपका उद्देश्य ऊंचा रख दो, कर्म रस देगा आपको। मेरे को रस दे रहा है ना, मैं बोलता हूं तो रस आ रहा है, और आप सुनने को आते तो भी रस आता है और सुनते तो भी रस आ रहा है, ये कर्म है। उद्देश्य ऊंचा हो जाए तो कर्मजन्य रस अगर धर्म और मर्यादा जुड़ती है तो कर्मजन्य रस आता है। अभी आप बैठे हैं ये भी तो कर्म ही है, अभी जो सुन रहे हैं ये भी तो कर्म है, ये कर्मजन्य रस मिल रहा है, इससे भविष्य उज्जवल। अगर मैं ना बोलूं और दुनिया ना बोले तो भी होगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म में रस लाना है तो आशय और उद्देश्य ऊंचा कर दीजिए। ऐसे ही भाव में रस लाना है, आपको रस चाहिए बिल्कुल पक्की बात है, आप बीड़ी भी पीते तो मजे के लिए, दारू भी पीते तो मजे के लिए, रोक और पोप म्यूजिक खेलते तो भी मजे के लिए, लड़ाई भी करते तो दुख मिटाकर सुखी होने के लिए, तलाक भी देते तो सुखी होने के लिए रस के लिए, और शादी भी करते तो रस के लिए, सर्विस भी करते तो रस के लिए, और सर्विस छोड़कर दूसरी जगह अटेंड करते तो भी रस के लिए सुख के लिए। लेकिन कर्म में आश्रय ऊंचा कर दीजिए, उद्देश्य ऊंचा कर दीजिए, कर्म रस आएगा। ऐसे ही भाव में प्रेम मिला दीजिए, भावना का रस आएगा। जिस वस्तु के प्रति प्रेम होता है उससे आपको रस आएगा। ये फूल है बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, ये मेरे मन में प्रेम होगा तो मेरे को रस मिलेगा। गंगा जी के प्रति मेरा आदर होगा तो गंगा को देखते ही आनंद होगा, और मुसलमान को धक्का मार के भी गंगा में फेंको तो अरे ये क्या करा काफर तूने, भले गंगा जी के सद्गुण से उसके शरीर में शीतलता है लेकिन हृदय में रस नहीं आएगा। क्या ख्याल है, हृदय नाराज हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में प्रेम का प्रसाद डाल दीजिए तो फिर वो कर्म में रस आने लगेगा। मेरे सामने कोई आमलेट ले आया, दारू ले आया और मेरा उसके प्रति प्रेम नहीं है तो मेरे को वो देखकर नाराजी होगी, लेकिन जिसने आमलेट में दारू में अपना प्रेम डाल रखा है, लीजिए खाई, अरे दोस्त तुम तो मेरे जिगरी जान हो, लाइए लाइए चीज चाहे कैसी भी, उसने प्रेम डाल रखा है ना आमलेट में, दारू में, सिगरेट में, जिसने अपना प्रेम उड़ेला है उसको वहां से रस आएगा। फिर भले विनाश के तरफ ले जाए लेकिन शुरू में रस तो आएगा ना। तो आप जहां प्रेम उड़ेलते हैं वहां से भी रस आता है, आपका आश्रय और उद्देश्य ऊंचा आता है होता है तब भी रस आता है। तीसरा होता है ज्ञान स्वरूप आत्मा का रस, उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा के रस से ही सारा दुनिया किसी न किसी ढंग से रस की झलकें पा रहा है, लेकिन रस के मूल को नहीं जानता इसीलिए भटक जाता है सारा जहां। तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा का रस, प्रेम स्वरूप से जगत का व्यवहार का पूजा का रस, और कर्म के उद्देश्य ऊंचे होने से कर्मजन्य रस अगर मिलेगा तो आप शराब कबाब में नहीं जाएंगे, कर्म का उद्देश्य ऊंचा होगा तो। और आप रसो वैसो वैश्वानर हो, रस स्वरूप वैश्वानर परमात्मा के साथ देर सवेर एकाकार हो जाएंगे। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगी, क्योंकि नाक के द्वारा रस मिलता है अगर वो आदत बन गई, जीभ के द्वारा रस मिलता है वही आदत बन गई, सेक्स इंद्री के द्वारा रस मिलता है ये आदत बन गई, तो दूसरे जन्म में सुअर बनना पड़ेगा, सेक्स इंद्री से रस लो, बकरा बनना पड़ेगा, कबूतर बनना पड़ेगा, खरगोश बनना पड़ेगा। जिन शरीरों में सेक्सी क्रियाएं ज्यादा कर सकते वो सेक्स अर्थात काम विकार का मूत्र इंद्री का रस लेने में अगर आपका मन लग गया तो ऐसी नीचियों में जाना पड़ेगा, ऐसे स्वाद का रस लग गया तो ऐसी शरीर में जाना पड़ेगा। तो ये सारे रस मनुष्य को कई जन्मों में भटकाते हैं, लेकिन इन रस का उद्गम स्थान चिन्मय अगर आ गया तो आप खाएंगे रस वाला भोजन, खाएंगे रस का उपयोग करेंगे, लेकिन रस का उपभोग करके ज्यादा नहीं खाएंगे। पति पत्नी का व्यवहार करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, लेकिन बार बार वो व्यवहार करके पत्नी की या पति की उम्र या नहीं घटाएंगे आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, गुरु देवाय। मैं तो मेरे गुरुजी को देखता था ना, बड़ा गुरुजी के प्रति आदर था, उद्देश्य ऊंचा था, गुरुजी को देखकर मुझे रस आता था, सच्ची बोलता। अभी ये लाखों लोगों के सामने और करोड़ों लोग सुनेंगे सुनाएंगे, तो ये कैसेट चल रही, मूवी चल रही है, ये कैसेट तो करोड़ों करोड़ों लोग सुनेंगे, लेकिन मेरा गुरुजी का साकार विग्रह अगर आप भी इधर कहीं प्रकट हो जाते या आते दिखते हैं तो मैं क्या करूंगा। जैसे डीसा में एक बार मैं सत्संग कर रहा था और सकड़ा दरवाजा था हॉल का, और लोग चप्पल उतार के दरवाजे के बाहर, चमड़े के चप्पल थे उस समय, आज से 40-38 साल पहले, प्लास्टिक के नहीं, और चमड़े के जूते थे हाथ वालों के, और चे चे करके बोले ऐसे जूते चप्पले, और ढेर लगा था, और गुरुजी आ रहे थे उसी रास्ते से, तो मैं दौड़ा और वहां सो गया। तो गुरुजी ने कहा ये क्या करता, मैं क्या मुझे वो चरण दिखते है, ये मैं जो सोया हूँ चमड़े के गंदे जूते हैं वो मेरे को नहीं दिखे, मेरे को तो गुरुदेव के चरण दिख रहे, मुझे रस आया, मुझे याद है। और इस बात का मैं बयान करके अपने को भाग्यशाली मानता हूँ, मैं अपने में हीनता का अनुभव नहीं करता हूँ। चमड़े के गंदे जूतों पर मैं लेट गया था, मेरा सौभाग्य था गुरुजी के चरणों में तो पहुंचा मेरा प्रणाम। मैं सत्संग के मंच पे था और गुरुजी एकाएक पधारे थे, मुझे पता नहीं था कि गुरुजी इधर इस ढंग से आ जाए। तो मेरा गुरु के प्रति आदर था, प्रेम था, और मेरे गुरुजी के बीच कई लोगों ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए क्या क्या खाइयां खोदी, कभी कभी मैं उन खाई में थोड़ा बहुत फिसला, लेकिन हमारे पवित्र भाव ने और गुरुजी की कृपा ने बनाए रखा, बनाए रखा, अभी तक चमक रहा है गुरुदेव का प्रसाद। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, ईश्वर की कृपा हुई तब समर्थ गुरु में श्रद्धा टिकती, ईश्वर की कृपा हुई तब सच्चे गुरु को सच्चा गुरु मानने में आदमी लगता है। अगर अपने कुकर्म करे और ईश्वर अंतर्यामी नाराज हो जाए तो सच्चे गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी और सच्चे गुरु के खिलाफ झंडा उठाकर चल पड़ेगी। अगर अपने कर्म हीन हो गए, उद्देश्य हीन हो गया, तो गुरु में श्रद्धा नहीं टिकने देगा ईश्वर। अगर अपने कर्म ऊंचे हैं तो सच्चे गुरु में श्रद्धा लगाए बिना ईश्वर छोड़ेगा नहीं। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावे वेद पुराण। मेरे कर्म ईश्वर को भा गए, मेरा अनुष्ठान ईश्वर को भा गया, तो अंदर से अंतर्यामी ईश्वर बोलता था कि जाओ लीलाशाह जी के पास, तो उधर क्या प्रभु कि मैं मिलूंगा उधर। बार बार होता था, मैं मंदिर में जब अनुष्ठान करता और मेरी मालाएं पूरी नहीं होती तो रात का एक बज जाता, मालाएं पूरी करने के बाद ही सोता, और जवानी थी सोता तो ऐसे सोता कि महाराज पता ही नहीं चले, और जंगल के जानवर मेरे पैरों को खुदेर के खा जाते, और सुबह चमड़ा उतरा हुआ मिलता, पैरों के तलवे चटे हुए छछुंदर उस गुफा में थे और फूंक मारते जाते और चमड़ी खा लेते। तो मैं नदी पे नहाने जाता तो पैरों के तलवे पे मांस खुला तो कितनी पीड़ा होती हो। लेकिन उस समय उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति की तड़प में एक महात्मा को दया आ गई मुझे देखकर, मेरे पर उनको दया आ गई, ये बेचारा देखो ऐसा। फिर वो अपने पास ले गए, भोजन भोजन कराए, यो किया। तो उद्देश्य ऊंचा है तो कठिनाई कोई महत्व नहीं रखती, और उद्देश्य ईश्वर को पाने का है तो ईश्वर कैसी बुद्धि प्रेरणा करते। बार बार मैं शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद ही कुछ जल लेता था या पानी पी दूध आदि लेता था। तो जब मंदिर में जाता तो पार्वती जी के श्री विग्रह से अथवा शिव जी के श्री विग्रह से फूल फल कुछ गिर पड़ते तो ये शुकुन माना जाता है। जब देव मंदिर में जाए और देवता की छवि से कुछ गिरता है तो समझो आप पर देवता प्रसन्न है। तो मैं जाता हूं और कई बार ऐसा होता तो मैं बोलता प्रसन्न तो हो लेकिन मिलोगे कब। ऐसे करके आलिंगन भी करता, पीपल देवता को भी आलिंगन करता और उनकी चंपी भी करता पीपल देवता की डालियों की बचपन से, और बड़ा आनंद भी आता। तो बाहर से तो पीपल को देखने के लिए आंख चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब चंपी करते और भाव आता तो आनंद भी उतना ही आता। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो, कर्म का रस पाने के लिए। मत कर्म कुर्वन् मत परमो मद भक्त संग वर्जिताः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवाः। जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है वह भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है, मुझे पा लेता है, मुझे वासुदेव के साथ एकाकार हो जाता है।